الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقال جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے جنت بنائی اور اللہ تعالی نے جہنم پیدا کی، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور پھر اللہ تعالی نے جنات اور انسانوں کو دنیا میں بسایا، ان کو مکلف بنایا، ان کو آزادی دی، ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ چاہیں تو جنت کے راستے پر چلیں اور چاہیں تو جہنم والے راستے پر چلیں، ان کو اللہ تعالی نے انتخاب کی آزادی، چننے کی آزادی دی ہے. انسان آزاد ہے، چاہے تو وہ صحیح راستے پر چلے یا پھر غلط راستے پر چلے. انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے. معلوم ہوا کہ انسان کو اختیار ہے، انسان مجبور نہیں ہے، انسان مجبور نہیں ہے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائے، بلکہ انسان کی چننے کی آزادی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عمل کی آزادی بھی انسان کو دی ہے. انسان جو چاہے سوچ سکتا ہے، طے کر سکتا ہے، انسان جو چاہے بول سکتا ہے، انسان جو چاہے عمل کر سکتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے، بولنے اور عمل کرنے تینوں کی آزادی دی ہے. ہاں بلا شبہ اس کی حدود ہیں، یعنی کہ بالکل انسان یعنی جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہت سارے مجرم چاہتے ہیں کہ سب کا مال حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے. انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا ہے، انسان پانی پر نہیں چل سکتا ہے، اس کی اپنی حدود ہیں. لیکن انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ بولنا چاہ رہا ہے اور زبان نہیں، کرنا چاہ رہا، چلنا چاہ رہا لیکن پاؤں ہی نہیں اٹھ رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے، بولنے اور عمل کرنے کی آزادی اور صلاحیت دی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ انسان کس راستے پر چلے، سیدھے راستے پر چلے یا گمراہی کے راستے پر چلے. اللہ نے انسان پر چھوڑا ہے، تیری مرضی، تو چاہے تو سیدھے راستے پر چل، چاہے تو غلط راستے پر چل. اللہ کو تیرے سیدھے راستے پر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر تو غلط راستے پر چلے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں. ہاں فائدہ تیرا ہے، نقصان بھی تیرا ہے. اللہ کا اس میں کوئی ذاتی اللہ کا فائدہ نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سیدھے راستے پر چلے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ گمراہی سے بچے. یہ اللہ کی حاجت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. انسان کا ہدایت کو اپنانا اور گمراہی سے بچنا اللہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا کچھ فائدہ ہوگا اس سے، کہ اگر لوگ اللہ کو نہ مانیں، اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. نہیں، ان سے بڑھ کے فرشتے اللہ کے پاس ہیں جو نور کے بنے ہیں، یہ مٹی کا بنا ہے اور وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت نہ کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ فرماتا ہے اللہ کا ارادہ تمہارے لیے حق کو واضح کرنے کا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ وہ ہادی ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والا، لہذا اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ بندوں کو اللہ تعالی حق بتائے، بغیر حق بتائے انہیں مجرم قرار نہ دے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ بندوں کو جنت والا راستہ بتائے، کیونکہ بندہ اللہ کا محتاج ہے، جب تک اللہ نہ بتائے بندہ نہیں جان سکتا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ لہذا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی بندے کو جنت کے راستے کی ترغیب دیتا ہے اور جہنم کے راستے سے ڈراتا ہے، اس میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے یا ایک آدمی چل رہا ہے، کوئی آدمی اس سے کہتا ہے بھائی صاحب آگے گڑھا ہے یا بھائی صاحب آگے کھائی ہے، ابھی سوچے شاید اس کا کوئی فائدہ ہے، ایسا آدمی نقصان اٹھائے گا، کیونکہ بدگمانی، غلط فہمی نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر واقعی اس بات پر وہ یقین کرے اور دیکھے آنکھ کھول کے، تو واقعی دکھائی دے گا کہ اس کی بات سچی تھی اور وہ اس سے بچے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو جنت کی ترغیب دی ہے اور جہنم سے ڈرایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف ترغیب دی ہے، جہنم سے خبردار کیا ہے، اس میں بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کو بتائیں گے نہیں معلوم کیسے پڑے گا۔ جنت سامنے نہیں، جہنم سامنے نہیں، جب تک کہ اللہ تعالی بتائے نہیں انسان کو معلوم کیسے پڑے گا۔ لہذا اللہ نے اپنی رحمت سے وہ علم اپنے نبی کو دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بندوں کو، اہل ایمان کو، ساری انسانیت کو بتایا۔ ایک انسان کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، نہیں، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ دل میں اس نفع والی چیز یا خیر یا کامیابی کی رغبت پیدا ہونا، اتنی رغبت کہ اس کے لیے کوشش آسان ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے نقصان ہے، نقصان کے بارے میں صرف جان لینا یہ کافی نہیں، بلکہ اس نقصان کے بارے میں اتنا اس کو احساس پیدا ہو جانا کہ اس نقصان سے بچنے کی زندگی میں حرکت پیدا ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ایک آدمی شراب پیے تو نقصان ہے، جوا کھیلے نقصان ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ صحت ضروری ہے، پڑھنا لکھنا ضروری ہے، نفع والا ہے، فائدہ مند ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن یوں ہی زندگی گزارتے ہیں، بھلائیوں سے یا نفع کی چیزوں سے محروم رہتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں بتایا جائے، کوئی آدمی بیٹھتا ہے اس کو سمجھاتا ہے، دیکھو بیٹا آج وقت ضائع کر رہے ہو، ایجوکیشن ضروری ہے، اگر تمہارے پاس ایجوکیشن رہے گا تم اتنا پڑھو گے، اتنا بڑھو گے، آگے تم کو یہ جاب ملے گا، اتنی تنخواہ ملے گی، تم گھر بنا سکتے ہو، موٹر خرید سکتے ہو، ماں باپ کو خوش رکھ سکتے ہو، تمہاری شادی ہوگی، اچھے گھر والی بہو گھر میں آ سکتی ہے، اگر پیسہ زیادہ ہوگا، نہیں تو مشکل ہوگا، کوئی دے گا نہیں، اپنی بیٹی کوئی نہیں دے گا۔ اب اس کے ذہن میں بات، ہاں معلوم تھا پڑھنا اچھی چیز ہے، پڑھنا اچھا ہے، وہ جانتا تھا، وہ یہ نہیں بولتا تھا پڑھنا برا ہے، وہ مانتا تھا پڑھنا لکھنا اچھی چیز ہے، ایجوکیشن فائدہ مند ہے۔ لیکن اب اس کے دل میں تحریک پیدا ہو گئی، اس کے پاس ایک موٹیو ہو گیا، اس کے پاس ایک بنیاد بن گئی، اور اس کے دل میں جذبہ ایسا پیدا ہو گیا کہ اب رات دن پڑھ رہا ہے، पढ़ते 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 वो इंजीनियर डॉक्टर बन के आगे बढ़ जाता है दुनिया में। एक आदमी है जुआ और शराब, उसको मालूम है बुरा है, सभी सालों से सदियों से लोग इसको बुरा मानते आए हैं। शराब पीने वाले को, जुआ खेलने वाले को अच्छा नहीं समझते लोग, लेकिन उसके दिल में उतना उसकी बुराई, उसका नुकसान इतना ज्यादा बेदार नहीं था। अब किसी ने बैठ के समझाया, देखो शराब पियोगे, कल को तुम्हारा बच्चा तुमको देख के शराब पिएगा, उसकी जिंदगी खराब होगी। शराब पीने से देखो, डॉक्टर बताया फुलां साहब पीते थे, उनको ये बीमारियां लग गई, लीवर फेल हो गया, स्किन खराब हो गई, ये बीमारी वो बीमारी, एक के पीछे एक बीमारियां उसने बताया, ये बीमारियां तुमको होंगी। जुआ खेलने से ये नुकसान है, पैसे के मामलात में देखो तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, तुम्हारी जब लत लग जाएगी इनकम पूरी इसमें चली जाएगी, बीवी बच्चों का कैसे चलाओगे, कल को बीमार पड़ जाओगे, इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे, किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियां तुम नहीं निभा पाओगे। अब उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि अगर मैं शराब पीऊं, जुआ खेलूं, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, और मैं मेरे बीवी बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब एहसास पैदा हुआ, ये एहसास है जिसने उसने कहा फेंक दिया उसने, आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से जुआ नहीं खेलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, सारे दोस्तों के शराबी और जुआरी नंबर डिलीट कर दिया पूरे, बुलाएंगे तो भी नहीं जाऊंगा, ब्लॉक कर दिया उन लोगों को, अब नहीं। क्यों हुआ ऐसा? एहसास पैदा हुआ। तो दो चीजें जिंदगी में है, याद रखिए इसको, एक है मालूमात और दूसरे है एहसास। मालूमात वो रोल अदा नहीं करती जो एहसास, बहुत से लोग जानते हैं, उनके पास इल्म होता है, मालूम होता है, लेकिन वो मालूमात एहसास से आरी होती है, उसमें एहसास नहीं होता है। आदमी अमल पर सिर्फ मालूमात से नहीं आता है, एहसास से आता है। नौजवान है, इधर बैठता है लड़कों में, उधर बैठता है, पिकनिक पे जाता है, खेल तमाशों में लड़कियों को छेड़ता है, सब वक्त जाया करता है, बाप का पैसा लेता है, दुकान से जाता है, फिल्में देखता है और दोस्तों के साथ अय्याशी करता है। बाप मर गया, बाप का इंतकाल हो गया, घर में बेटी है, बहन, छोटा भाई है, मां है, अब सब आते हैं, हाथ रखते हैं हाँ जनाजे में कंधों पर, कहते बेटा अब अबू तो चले गए, अब तू है घर का जिम्मेदार, तू है। अब देख बहन है घर में बैठी हुई निकाह की उम्र की, छोटा भाई तेरा है और मां है, अब इनकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। पहले भी था लेकिन अब क्या हो गया अचानक, अब वाकई नींद से जागा, अब एहसास पैदा हो गया, हाँ अब जिम्मेदारी आई। अब जब एहसास जिंदगी में आता है, अब इसकी जिंदगी बदल जाती है, किसी की पूरी बदल जाती है, कोई एकदम अपना बुराइयों का सिलसिला एकदम घटा देता है और जिम्मेदारियों में लग जाता है। अब ये दुकान पर बैठ रहा है, बाप की जगह वो दुकान संभाल रहा है, सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, हिसाब किताब देख रहा है, माल भर रहा है दुकान के अंदर, घर में सारी जिम्मेदारियां, सारे सामान घर के ला के रख रहा है, मां से अच्छा सुलूक कर रहा है, छोटा भाई उस पर ध्यान दे रहा है, उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा बराबर, कभी पूछता नहीं था। लेकिन आज क्या हो गया, अब इसके अंदर तब्दीली आई, अब ये निगरानी कर रहा है, छोटी बड़ी अब निकाह की बहन है, उसके बारे में उसके साथ कपड़े ला रहा है, उसको ये कर रहा है वो कर रहा है, उसकी सोच रहा है, तैयारी कर रहा है, पैसे जमा रहा है, जिम्मेदारियां घर की सारी हैं उसके लिए, ये हरकत में आ गया। क्यों? उसको मालूम नहीं था ये करना पड़ता है, सब मालूम था, लेकिन अब जिम्मेदारी आ रही, अब एहसास उसको पैदा हो गया। ये एहसास है जो असल है जिंदगी में। दाई का काम क्या है? एहसास पैदा करना। हम इन्फॉर्म करने को काफी समझते हैं, यहां गलती है, और जिसने ये उसूल समझ लिया वो आदमी अच्छा दाई बन सकता है। कि हम इसको काफी समझते हैं कि बता दिया ना उसको मैंने, اس کو معلوم ہے کہ بعض اوقات تو بتاتے بھی نہیں لوگ, کیوں؟ یہ بھی کوئی بتانے کی بات ہے, تو سب کو معلوم ہے. بھائی معلوم ہونا کافی نہیں ہے, معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی میں اس چیز کا احساس بھی ضروری ہے, اس کا احساس بھی ضروری ہے. جس دن احساس پیدا ہو جاتا ہے اس دن زندگی میں عمل آتا ہے. لہذا داعی کا کام یہ ہے کہ وہ معلومات کو ایسے انداز میں پیش کرے کہ دلوں میں اس کا اثر ہو, اس کے اندر احساس پیدا ہو. اگر احساس نہیں آئے گا معلومات کونے میں پڑی رہیں گی. احساس کے بغیر معلومات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ٹارچ ہو اور اس کے اندر بیٹری نہ ہو. دوبارہ بٹن روشنی ہوگی نہیں. ایسی گاڑی ہے جس کے اندر جی پی ایس لگا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پیٹرول نہیں. جی پی ایس بتا رہا کدھر سے جانا, کیسا جانا, کیا جانا, لیکن اس کے اندر پیٹرول نہیں, گاڑی چلے گی نہیں. تو خالی رستہ معلوم ہونے سے گاڑی چلتی نہیں, اس کے اندر پیٹرول چاہیے. وہ پیٹرول کیا ہے؟ یہی وہ جذبہ ہے. انسان کو حرکت ملاتا ہے کیا؟ اس کا جذبہ. اس کی معلومات نہیں, محض معلومات کافی نہیں ہے. معلومات کے اندر جب جذبہ مکس ہو جاتا ہے, احساس جب اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے, تب زندگی میں حرکت پیدا ہوتی ہے. جس نے اس حقیقت کو سمجھا وہی آدمی صحیح طرح سے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے, ورنہ نہیں. اور اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے ترغیب و ترغیب ہے. احساس پیدا کرنا, لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرنا, لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرنا, اچھی چیز کی رغبت, لالچ اس کے دل میں پیدا کرنا, حرص پیدا کرنا اس کے دل میں, اور بری چیز کے نقصان کا ڈر پیدا کرنا اس کے دل میں. بات کے ذریعے سے ہی ہوگا وہ, لیکن اس کے لیے وہ انداز اپنانا ضروری ہے جس سے رغبت پیدا ہوتی ہے, وہ انداز پیدا کرنا ضروری ہے جس سے ڈر پیدا ہوتا ہے. لہذا یہ بہت اہم چیز زندگی میں ہے, جو اگر ہم کو معلوم نہ ہو تو ہم قوم کی صحیح طور پر اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھیں گے میسج بھیج دیا تھا اس کو میں نے, قرآن میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے, لیکن اس نے پڑھا رکھ دیا, کیفیت پیدا نہیں ہوئی. کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ اس کو اس انداز میں بتاؤ گے. تو یہ بہت اہم چیز دین میں ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. ترغیب و ترہیب, ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا, کسی کو اٹریکٹ کرنا کسی اچھی چیز کی طرف, اس کے دل میں ہاں اور لالچ اور حرص والا جذبہ پیدا کرنا. یہ چاہیے مجھ کو, جنت چاہیے, کامیابی چاہیے, اور دو اس میں ڈر پیدا کرنا, جہنم نہیں چاہیے, اتنا ڈر کہ آدمی بچنے والا بن جائے, بچنے والا بن جائے. جب ڈر پیدا ہوتا ہے تو آدمی بچتا ہے, جب ڈر پیدا ہوتا ہے تو آدمی بچتا ہے. تو پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھی کہ ترغیب کے لیے کیا چیزیں ہیں, جو قرآن و سنت میں کیا انداز اختیار کیا گیا ہے. نمبر ایک, لوگوں کو اللہ کے قرب کی رغبت دلانا. جیسے ہم نے بتایا دنیا میں انسان میں لالچ ہے کہ کوئی بڑا ہے تو اس کا قریب ہونے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. کوئی سیاستداں ہے, کوئی بہت سماج کا بڑا آدمی ہے, اس سے اپنا تعلق رکھ کے, اس سے قریب ہو کے وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت بڑھے گی. تو ایک انسان کو اللہ کے قرب کی ترغیب دینا کہ سب سے بڑا تو اللہ ہے, تو اگر اللہ کا قریب ہی ہو جائے گا تو تیرے کام بنیں گے. اللہ کا قرب جب ملتا ہے, اللہ کی محبت جب ملتی ہے, تو اللہ کی نصرت بھی ملتی ہے. تو ایک انسان کو اللہ کے تعلق کی اور قرب کی رغبت دلانا, اللہ کی بڑائی بتا کر, اس کے فائدے بتا کر. ایک نمبر دو, دنیا میں حیات طیبہ کی ترغیب دینا کہ دنیا میں چین و سکون کی زندگی, اور دنیا میں اللہ کی مدد, اللہ کی عطائیں, یہاں کی ساری چیزیں, اللہ کی طرف سے ایک اچھا جینا, چاہے ظاہری طور پر مادی طور پر نہ ہو, اندر سے اچھی زندگی ایک دم. تو یہ زندگی ملتی ہے دین پر, اس کو رغبت دلانا تاکہ اس زندگی کے پانے کے لیے وہ کوشش کرے. اسی طرح سے تیسری چیز, دنیا میں مادی نفع اور خیر و برکت کی ترغیب دینا ہے. کہ دین پر چلو گے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. انسان ٹھیک ہے بھائی آخرت میں ملے گا، لیکن انسان کی مزاج میں کیا ہے، آج نقد کل ادھار، تو کل کا کس نے دیکھا، آج ہے تو بولو. آدمی کے مزاج میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں آخرت کا وعدہ کیا ہے وہیں دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے. تو ہم لوگوں کو جب دین کی طرف لائیں تو ہم ان کو یہ بھی بتائیں کہ آخرت میں ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. ان وعدوں کو بھی سامنے رکھیں کہ ایک دنیا دار آدمی، ایک دنیا دار آدمی، ایک آدمی مثال کے طور پر مال و دولت کا شوقین، آپ اس کو بتائیے، دیکھیے دین بتاتا ہے کہ مال میں برکت ہوگی. کیسے؟ اگر تم رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو گے اللہ مال میں برکت دے گا، سچ کے ساتھ تجارت کرو گے ایمانداری سے مال میں برکت دے گا، حدیث اس طرح سے آیا. تو دین میں دنیا میں بھی فائدہ ہے یہ بتانا، ورنہ بہت سارے دینوں میں کیسا ہے کہ ان کے دین دھرم ریلیجن پر چلنے کے لیے دنیا تیاگنی پڑتی ہے، دنیا چھوڑ دو. اسلام ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کو دین کی طرف لانے میں ہم یہ بتائیں کہ بھائی دنیا چھوڑ کے دین پہ چلنا نہیں، دنیا میں رہ کے دین پہ چلنا ہے. اور جب دنیا میں رہتے ہوئے دین پر آدمی چلے گا تو اللہ دنیا کو بھی اچھا بنائے گا، یہ رغبت اس کو دی جائے. نمبر چار، دین پر چلنے میں دنیا میں اللہ تعالی مصیبتوں سے بھی بچائے گا. تو انسان چاہتا ہے کہ مصیبتوں سے بچے، اس کو یہ ترغیب دی جائے کہ دین میں مصیبتوں سے نجات بھی ہے. آپ دیکھیے صاف ستھری بات ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا اور زنا اور اس طرح کی کئی برائیاں ہیں، یہ تین ہی دیکھ لیجئے. ایک آدمی ان سے بچتا ہے، ایک انسان کو صحت اور مال اور ذہنی اعتبار سے سکون ملتا ہے. جوئے والے جتنے ہیں اکثر ان کے ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے، ڈاکٹروں سے پوچھیں، آیا آیا، گیا گیا، ہوا نہیں ہوا، معلوم نہیں کیا ہوتا. تو ہمیشہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے اور ذہنی طور پر ہمیشہ سٹریس میں ہوتا ہے، جس کا پہلا اثر کہاں آتا ہے، ہارٹ پر. تو جوئے والے اکثر کمزور دل کے ہوتے ہیں. اسی طرح سے شراب ہے، شراب سے لیور خراب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، عزت بھی خراب ہوتی ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور بعد میں جب بیماری بڑھتی ہے تو اور پیسہ لگتا ہے. تو انسان کی فائنینشیل لائف، سوشل لائف اور اسی طرح سے ہیلتھ برباد ہو جاتی ہے. تو ایک آدمی دین پر جب چلتا ہے ان سارے نقصانات سے دین کو بچاتا ہے، اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اور بھی مصیبتوں سے بچاتا ہے غیبی طریقے سے، یہ اس کو بتایا جائے. نمبر پانچ، ترغیب کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جنت کی ترغیب دی جائے. انسان ہمیشہ چاہتا ہے، اس کا خواب ہے اس سے بہتر ایک زندگی ہو. کوئی آدمی خوش ہے اس میں؟ نہیں ہے، مگن کتنا بھی ہو، لیکن اس کو جب پا لیتا ہے اس کو تو لگتا ہے میں جو دوڑا اس کے پیچھے، بہت دوڑا، یہ گاڑی ملی مجھ کو، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ گاڑی اصل نہیں تھی جس کے لیے دوڑ رہا تھا میں، یہ چیز نہیں تھی جس کے لیے اصل میں نے اتنی کوشش کی، میں جو سمجھا وہ یہ نہیں نکلا. اکثر انسان سب کچھ پا لینے کے بعد انسان کو احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو میرا خواب تھا، میرے خواب میں جو ہے وہ کچھ اور ہے اور میرے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ اور ہے. میں سمجھا ہی وہ ہے لیکن یہ وہ نہیں. جسے آدمی جاتا ہے بھیڑ میں، اس کو لگتا ہے شاید میرا دوست ہے، آواز دیتا ہوں، پلٹ کے جب دیکھتا ہے سوری معاف کرنا بھائی غلطی سے آواز دیا، میں سمجھا میرا دوست ہے، اس کی دیسی کپڑے ہیں، تو میں سمجھا یہ وہ ہے، لیکن جب پلٹ کے وہ دیکھتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ وہ نہیں جس کے لیے میں اس کے پیچھے دوڑ کے اس کو آواز دیا. زندگی کا یہی حال ہے، دنیا کا یہی حال ہے کہ انسان کے اندر ایک اچھی زندگی کی طلب ہے، سکون، ایک دم مزہ، اچھا، وہ جو زندگی ہے وہ مال دولت، محل اور گاڑی موٹر اور پیسہ اور عہدہ یہ پا کر آدمی سمجھتا مل جائے گی. جب تک نہیں ملتا ہے تب تک ایسا لگتا ہے، مل جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتا تھا، کیونکہ اس میں وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے، اس میں وہ فلفلمنٹ نہیں ہے، اس میں وہ پانے کا احساس نہیں ہو رہا، اس میں وہ پانے کا احساس مجھ کو نہیں مل رہا ہے جو مجھ کو چاہیے. کچھ اور ہے، انسان کی طلب کچھ اور ہے، کوئی اور چیز ہے جو یہ نہیں ہے. तो इंसान को बताया जाए है, मरने के बाद कहानी खत्म नहीं, मरने के बाद भी एक जिंदगी है, इससे अच्छी एक दुनिया है। है हाँ है, कहां दिख रही नहीं, दिखेगी तो कौन उसके लिए अमल करेगा, गैब में छुपा के रखा है, ईमान जरूरी है। अल्लज़ीन यूमिनूना बिल्गैब, देखेंगे तो सभी भागेंगे उसके पीछे, बिन देखे कौन उसके लिए जीता है, ये इम्तहान है, इम्तहान है। लिहाजा इंसान को जन्नत की तरगीब अगर दी जाए उसके दिल में जज्बा पैदा होगा कि हाँ एक अच्छी जिंदगी जिसको मैं चाहता हूँ उसके लिए मुझको कोशिश करना है। तो जन्नत की नियमतें सामने रखना ताकि रगबत पैदा हो। कोई आदमी सऊदी जाके आता है, कोई आदमी अमरीका जाके आता है, सब जमा होते घर वाले, हाँ बैठता हुआ हीरो बन के सबके बीच में, अमरीका में ऐसा है, ऐसी बिल्डिंग है वहां पे, ऐसे पार्क है वहां पे, एकदम साफ, पेरिस में एकदम जबरदस्त, हांगकांग में, सिंगापुर में, अरे एकदम ऐसा, होटल देखे तो ऐसे, हाँ खाने देखेंगे तो वैसे, पार्क एकदम साफ, वहां के रास्ते यहाँ के महलों से अच्छे, अच्छी बात है भाई, एकदम ऐसा सिस्टम वहां पे, यू तू सब बोलता, यहाँ के बच्चे जो सुनते हैं बैठ के, चाचा मेरे को भी सिंगापुर ले जाएंगे, छोटा भाई कैसा बोलता, भाई मेरे लिए भी ट्राई करो ना जरा, कैसा देखा उसने सिंगापुर को, अमेरिका गया हो नहीं, लेकिन उसने क्या किया उसके सामने, थोड़ा सिंगापुर का थोड़ा अमेरिका का मिला के ऐसा बोला उसके सामने कि इसके दिल में क्या हो गया, मैं कल डॉक्यूमेंट लेके आता मेरे पूरे, तरह मेरे लिए भी ट्राई करो ना, अच्छी अच्छी बात है, कोई बात नहीं देखेंगे, होगा तो अल्लाह जाएगा तो सब होगा, अच्छी बात। तो एक आदमी उसको जब पेश करता है, इंसान ने देखा नहीं, उसने देखा नहीं अब तक, लेकिन सुन के जब बोलने वाले पे भरोसा होता है, और कभी कभी पूरा भरोसा नहीं भी हो तब भी लगता है और भी बहुत कुछ होगा इसको भी नहीं मालूम होगा, तो आदमी के दिल में चाहत पैदा होती है। जन्नत देखना जरूरी नहीं है, एक सच्चे ने हमको जब बता दिया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने बतलाया वमन अस्दक मिन अल्लाह क़ीला, अगर इसके दिल में यकीन है तो उसके दिल में वाकई पुख्ता कलब पैदा होगी, और अगर नहीं भी है तो उसको लगेगा हो सकता हो, उसके दिल में वो चाहत पैदा होगी। एक गैर मुस्लिम भी सुनेगा तो वहां से बहुत अच्छी जिंदगी से मिलना चाहिए जिंदगी, बहुत सारे लोग दिखता नहीं है फिर भी इंसान की अपनी चाहत होती है वो अमल करते हैं। हर सारे इलेक्शन में क्या होता है, पांच साल में होता है ना, इंसान की चाहत है उसको अंधा कर देती है। आप देखिए लोगों का हाल देखिए, सियासत आता है जब मैं आ जाऊंगा हर एक अकाउंट में इतना आ जाएगा, मैं जब आ जाऊंगा एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, मैं जब आ जाऊंगा पूरे यहाँ बस्ती के बल्ब बदल दूंगा, नल बदल दूंगा, रास्ते बदल दूंगा, स्कूल बना लूंगा, हर घर में स्कूल होगा, जो भी बोलना बोल देता है, लोग बैठ के सुनते हैं वहां पे सर्दी में, हाँ ब्लैंकेट तोड़ के सुनते हैं। इंसान की अंदर चाहत उसको अंधा कर देती है, इंसान ऐसा है। झूठे वादों पर एक आदमी इतना सब कुछ कर सकता है, कैसे कर सकता है, अंदर की चाहत। लेकिन बोलने वाला क्या करता है, उसके सही नंबर डायल करता है, आदमी का एक नंबर है, उसका एक पासवर्ड है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो बराबर मास्टर पासवर्ड उसका डालते हैं, बराबर उसकी मशीन खुल जाती है, दिल के दरवाजे उसके खुल जाते हैं, वो ख्वाब दिखाता है उसको, उसको लगता है मुझको ऐसी जिंदगी चाहिए, लगता हर साल पांच साल में झूठ बोलते हैं लोग, हो सकता है ये करे, हो सकता है। तो वो जो उम्मीद इंसान की है और अंदर की जो चाहत इंसान के अंदर है, वो चाहत उसको वही करवाती जो पिछले 50 साल से गलती करते आया, फिर बाद में गालियां देना शुरू करता है, लेकिन बराबर गलती करता है। क्यों किया गलती भाई, अकल नहीं है, है तजुर्बा भी, अकल है, बैड एक्सपीरियंस है, कंफर्म बैड एक्सपीरियंस, हाँ, और वो भी लोकल नहीं इंटरनेशनल है, सबका तजुर्बा यही है, लेकिन इंसान की उम्मीदें, उसकी चाहतें उसको वो करवाती हैं जो बाद में जाके फिर पछताता है क्यों किया। इंसान ऐसा है, जब झूठे लोग कर सकते तो आप सच्चे इल्म के साथ नहीं कर सकते, करना चाहिए। तो आप यहां बोलने का मतलब यह है कि आप ये सोचेंगे अब जन्नत कौन देखा और कैसा मानेगा आदमी, अरे भाई उसके दिल में तलब है उस चीज की, उसके दिल के अंदर चाहत है उसकी, आप उसको बोलो तो सही, उसके सामने अच्छे तरीके से रखो तो सही। अगर उसके अंदर वो चीज बेदार हो जाएगी वो मानेगा। कितने लोग हैं क्रिश्चियंस, आप देखिए दावत देते हैं जीसस इज फॉर यू, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ हाँ, पूरे पाप, तुम्हारे सारे पाप जीसस ने ले लिए अपने ऊपर, तुम बेपापी हो जाओगे, नॉन पापी तुम साफ। आदमी के अंदर क्लीन होने की चाहत है, मैं चाहता हूं कि मैं एकदम मेरे पाप सारे खत्म हो जाए, उसको वो उम्मीद दिलाते हैं आ जाओ, जीसस इज वेटिंग फॉर यू, आई एम द वे। वो आदमी को दिल के अंदर वो उमंग उसके है, वो चाहत है उसके अंदर, उसको कोई पेश करने वाला चाहिए, वो मान लेता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आदमी पहले आया पहुंचा वो लेके उड़ जाता है। कहां कहां गए वो लोग, अफ्रीका के जंगलों में गए, लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी देखिए उन लोगों ने भरा वो लोगों को गले में, कपड़े पहनने के लिए लेकिन गले में क्रॉस मिलेगा उसके, बदन पे ढंग के कपड़े नहीं लेकिन गले में क्रॉस है। कैसे इंसान चाहता है कि कुछ ऐसा माने, तो इंसान की फितरत में कुछ है ऐसा, आपको वो सही बटन दबाना चाहिए, इसी का नाम तरगीब है। जन्नत के बारे में आदमी ना सोचे कि यार जन्नत तो देखा नहीं इंसान ने और कैसा उसको तरगीब दूं और कैसा मानेगा उसको। इंसान के अंदर अल्लाह ने जब जन्नत बनाई, जन्नत को किसने बनाया, अल्लाह ने, इंसान को किसने बनाया, अल्लाह ने, और जन्नत की तरगीब देने के लिए कहा, क्या उसके अंदर अल्लाह ने तलब नहीं रखी होगी, तलब रखी होगी, तभी तो अल्लाह ताला ने जन्नत और इंसान को बना के दोनों का कनेक्शन रखा है। तुम पेश तो करो, उसके अंदर पैदा होगा, मादा है उसके अंदर, तो तरगीब जन्नत की बहुत पावरफुल चीज है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आज नहीं जागेगा, आप किसी को जगाते उठ जा तो नहीं उठता, दो बार तीन बार, कोई आदमी फौरन उठ जाता, कोई आदमी फौरन नहीं उठता। तो जन्नत इतना आप सुनाए लोगों को कि लोगों के दिलों में क्या हो, वो चीज ताजा हो जाए, वो अपनी दुनिया की नींद से जागे। दुनिया जो है, दुनिया का माल, दुनिया के ओहदे, दुनिया की मोटर गाड़ियां बंगले, दुनिया के बागात, दुनिया की नहरें, दुनिया की सारी चीजें लोरी देके इंसान को सुला देती है, सो जा, यही है अच्छी एकदम मीठी नींद, सो जा। आपको उस नींद से जगाना है, उठ जा, ये ख्वाब है, ये क्या है, ख्वाब है, बेदार हो जा, असल जिंदगी आखिरत की है, उसको जगाना है। पहली आवाज में उठेगा, हो सकता है उठ जाए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की तरह, एक बार बताया मान ली, लेकिन किसी को क्या करना पड़ेगा, बार बार उठाना पड़ेगा, किसी को झिझोड़ना पड़ेगा, उठ जा, कोई मारेगा भी नींद में, ठीक है उठ जा, उसको जगाना पड़ेगा। तरगीब तरगीब ये कि आप लोगों को उनकी गफलत की नींद से जगाएं। कोई तरगीब से उठता और कोई डरावे से, अब मन सोया, कोई आदमी सोया हुआ है, अब अरे सांप आया तो क्या होगा, नींद में उसके गया बराबर इंफॉर्मेशन बराबर, हाँ जो उसका डर का पार्ट है वहां पे एकदम लाल बत्ती जल गई, एकदम उठ के आदमी बैठ जाएगा, कहां है साहब, डर गया आदमी, तो उठने वाला बराबर उठता है, उसको सही मैसेज देना चाहिए। तो आप ये नहीं बोलेंगे सांप आया, लेकिन आप लोगों को जहन्नम के बारे में डराएंगे, इंसान के अंदर वो जो डर है कभी ना कभी वो ट्रिगर होगा और उसकी जिंदगी सही होगी। और कितने लोग ऐसे हैं, मालूम था जहन्नम है, जहन्नम है, जहन्नम में जाएंगे, मरेंगे, जलेंगे और ये होगा वो होगा, वो क्या था, पैसिव नॉलेज था उनका, लेकिन किसी खुतबे में आए बैठे सुना पूरा, जल्दी आए गलती से और पूरा खुतबा सुना اور اس خطبے میں جہنم جہنم ایسا ہوگا جہنم یوں ہوگا، ایک دم احساس پیدا ہوگا کیا کر رہا تو، کیا کر رہا تو، کیسی زندگی گزار رہا. اس دن اس کو کیا پیدا ہوا، اس کو ایک بہت قیمتی چیز ملی. کیا ملی؟ احساس. وہ احساس لے کے گھر پہ گیا اور گھر پہ سب اس نے گناہ کی چیزوں کو ختم کر دیا اور بولا آج سے میں صحیح زندگی گزاروں گا. تھوڑا 19-20 ہوا، ٹھوکرے کھایا کچھ، لیکن پھر سیٹ ہو گیا، پھر سیٹ ہو گیا. یہ ترغیب و ترہیب کی طاقت ہے، یاد رکھیں اس چیز کو، یہ معمولی چیز نہیں ہے. لوگوں کے اندر احساس بیدار کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، ساری خیر یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، ہم نے پانچ چیزیں دیکھی، اب چھٹی چیز دیکھتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو عنوان ہے ہمارا، یہ بہت اہم عنوان ہے. نمبر 6، عمل پر تعریف، کسی اچھے کی تعریف کرنا. ترغیب کا ایک طریقہ، چھٹا طریقہ کیا ہے؟ اچھوں کی تعریف کرنا لوگوں کے سامنے. انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ اس کے اندر جیلسی ہے، اس کے اندر کمپیٹیٹو اسپرٹ ہے، اس کے اندر سراہے جانے کا جذبہ ہے. وہ چاہتا ہے میری تعریف ہو، وہ چاہتا ہے میں دھیان میری طرف ہو اس کی طرف نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے اچھا بنوں. سب کا نچوڑ کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے وہ سینٹر آف اٹینشن بنے. انسان کی فطرت میں آپ ہٹا نہیں سکتے اس کو. مثال، ایک بچہ پہلی بار کچھ ڈرائنگ کرتا ہے، آپ اس کو کاغذ لا کے دیے، پین لا کے دیے، کلر لا کے دیے، الٹا سیدھا کیا کیا، دھاگے بنائے معلوم نہیں، کچھ بھی کیا اس نے، لا کے ابو کو اما کو بتاتا، ابو دیکھو کیوں، کیا ضرورت ہے، مطلب کیوں بتا رہا. اب بولے ہٹ جا بازو کو، ناراض ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے. کس کے پاس جاتا؟ کچن میں. اما کے پاس جاتا، اما دیکھو میں نے کیا بنایا. ماں کہتی ماشاء اللہ کتنا اچھا بنایا میرا بچہ، خوش ہو جاتا ہے. پھر آ کے واپس بزی ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ جذبہ ہے، مجھ کو کوئی سراہے، مجھ کو کوئی اپریشیٹ کرے، میری کارکردگی کو کوئی کہے بہت اچھا. انسان کے اندر ہے یہ، وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے. پہلا بچہ پیدا ہوا گڈو، اب اس کے بعد گھر میں 4 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد گڑیا آئی. اب کیا ہو رہا؟ ماں اس کو دودھ پلا رہی، یہ قریب جا رہا، بیٹا ہٹ جاؤ گا، اس کو کھینچ رہا، میری پیاری بہن اس کو دور جا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا ہے کہ نہیں، ہاں آپ کو بھی ہوا ہے اسی لیے اتنے جلدی بولنے سے پہلے سمجھ گئے. ایک زمانہ تھا کہ کبھی میں مرکز ہوا کرتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ سارا دھیان ماں کا کدھر گیا؟ ادھر گیا. ابو باہر سے آئے، میں جا کے دروازہ کھولا، ابو سیدھا جا کے میری بچی گڑیا، اب میری طرف، میری طرف دھیان نہیں. میں بیٹھا ہوں، اس کو گود میں لے رہے ہیں، اس کو لے کے گیلری میں رات میں ٹہل رہے ہیں، میں رو رہا ہوں تو ڈانٹ کے چپٹا رہے ہیں، دیکھ رہا نہیں میں یہاں پہ اس کے لیے آؤں، سو جا چپ جا. پہلے ایک زمانے میں میں گود کی زینت بنا کرتا تھا. وہ چاہتا ہے کہ مجھ کو، میں سینٹر آف اٹینشن بنوں. انسان کے اندر یہ چیز ہے، انسان تعریف کا شوقین ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے یہ آدمی میری جھوٹی تعریف کر رہا ہے اس لیے کہ مجھ سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تب بھی اچھی لگتی تعریف. ایک آدمی آپ کو دھوکہ دینے والا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ڈاکو ہے، میری تعریف اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد مجھ سے کچھ مانگنے والا ہے، اور یہ آدمی میرا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، پھر بھی تعریف کرتا ہے. وہ تعریف بھی بڑی اچھی لگتی ہے، نقلی تعریف بھی اچھی لگتی ہے آدمی کو. سوچیے آپ کیوں چاہتا ہے، اس کے اندر شوق ہے اس چیز کا. اپنے آپ کو دوسروں سے آگے بڑھانے کا، اسی لیے آدمی دیکھتے ہیں آپ، ایک آدمی ہے کچھ لاتا ہے خریدتا ہے، अब दूसरा आदमी उससे अच्छा कुछ लाता है तो इसकी लज्जत क्या हो जाती है, कम हो जाती जब उसको देखता है। वो चाहता है कि मेरा दूसरों से अच्छा। एक औरत, उसके शौहर ने उसको गले का हार दिया सोने का, बहुत दिनों से सता रहा था, उसके बाद चलो किसी तरह से लेकर आया। अब पड़ोसन को बताया उसने, पड़ोसन ने बताया मेरे शौहर की भी प्रमोशन हुई है, देखो उन्होंने क्या लाया। अब ये जब देखती कि ये उससे ज्यादा है तो क्या हो जाता, मूड खराब हो जाता। हालांकि पाई है, खोया नहीं, पहले से अच्छी है, लेकिन जब दूसरों के मुकाबले में अपने आप को कमतर देखता है इंसान तो गम पैदा हो जाता है और चाहता है कि उससे अच्छा हो। रात में शौहर को क्या बताएगी, अब की बार तो ये हो गया, अगली मतलब आप लाओगे ना तो वो लाना जो पड़ोसन के पास है, या उससे अच्छा लाना। इंसान हमेशा दूसरों से अच्छा बनना चाहता है, ये हमारी वीकनेस है भाई, ये हमारी फितरत है। आप अगर चाहते हैं कि किसी में हरकत पैदा करें, एक तरीका उसका ये भी है कि उसके सामने किसी और की तारीफ की जाए जो वाकई अच्छा है। वो देखता उसको, उसकी तारीफ हो रही तो ये अच्छा है, उसके अंदर उसकी इसकी चाहत पैदा होती है। और आप इसको ट्राई करना चाहते हैं बच्चों पे कीजिए। साइकाइट्रिस्ट और जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने एक चीज बताई, अगर आप बच्चा एक शरारती बच्चा स्कूल में है, क्लासरूम में है, शरारत करता हो, एक तरीका ये है उसको बुलाया, इधर आ गया, इधर खड़ा हो, मुंह चेहरा उधर कर दीवार की तरफ, खड़ा हो जाता और ये पढ़ा रहा, और पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चा हीरो बनता क्लास का। वो क्या करता है, अब उसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी रखना है, क्लास के अंदर वो जोकर बनता है। देखिए यार समझें इसको अच्छे से, वो क्या करता है, जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते उधर जाता है वो पलट के बच्चों को कुछ भी ऐसा ऐसा करता है और बच्चे हंसते, टीचर पलटता वापस वैसे के वैसा हो बिल्कुल। क्यों, वो लोगों की, बच्चों की वो बुरा बन के भी लोगों का अटेंशन देता है। एनीवेज आई एम हैविंग अटेंशन, किसी भी तरह से मुझको क्या मिल रही है, लोगों की तवज्जो मिल रही है और मैं क्लास के अंदर सबकी तवज्जो का मरकज है। इसकी बजाय दूसरा तरीका, टीचर उसने बुरा किया, उसने गलती की, शरारत की, टीचर ये करता है किसी और बच्चे को जो कि वाकई अच्छा है बुलाता है, उसको अपनी तरफ से गिफ्ट देता है कुछ, कहते ये बच्चा इसने बहुत अच्छी पढ़ाई किया और ये बच्चा होनहार है, बात मानता है, शरारत नहीं करता है, बहुत अच्छा बच्चा है, या दूसरों के सामने तारीफ करता है, इस क्लास में बहुत से अच्छे बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा ये है, ये ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, ये पढ़ाई करता है, क्लास में बात नहीं करता है ज्यादा पढ़ाई के वक्त में, और होमवर्क बराबर करता है, जो बोले वो सुनता है। अब सब उसको देखते हैं कि मतलब तवज्जो का मरकज कौन बन गया, आप, मैं नहीं, शरारत करके मैं बन रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, मेरे से फोकस हट के किधर गया, स्पॉटलाइट उसके ऊपर आ गई, वो नहीं चाहता है। अब इसके अंदर चाहत ये पैदा होती है कि जिस वजह से वो मरकज बना है तवज्जो का, अब क्या हो, मैं बनना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टीचर शरारत करने वाले को मरकज नहीं बनाता है अपनी तवज्जो का, टीचर किसको मरकज बनाता है अपनी तवज्जो का, उसको जो अच्छा है, तो मुझको अगर तवज्जो चाहिए तो मुझको भी वैसा करना पड़ेगा। तो बच्चों के अंदर मिजाज बनता है कि हम अगर वैसा करेंगे तो हमारे ऊपर ध्यान आएगा, शरारत करके हमको अटेंशन मिलने वाली नहीं है। डांट दिया थोड़ा सा, छोड़ दिया उसको, लेकिन दूसरा बच्चा अच्छा है, इधर आओ बेटा उसके साथ अच्छा, चलो मेरे साथ चलो ऑफिस में चलो, तुमको ये देंगे, ये काम करो, क्यों सर उसको क्यों, वो ऐसा है, वो अच्छा काम करता है। अब वहां से उनके अंदर ये पैदा होती है कि हम भी वैसे बनेंगे, वो कम्पीट करते हैं भलाई में न कि बुराई में। ये एक तरीका है इंसान की इसलाह का, ये एक तरीका है लोगों को अच्छा बनाने का, कि उनके सामने अच्छों की तारीफ की जाए ताकि उनके अंदर भी वैसा बनने का जज्बा पैदा हो। ये बहुत एक तरीका है इसलाह। घर में ट्राई करके देखो भाई, आप पिटाई करने की बजाय किसी बच्चे की आपके दो बच्चे मान लीजिए, तीन चार बच्चे आपके, जितने भी बच्चे हैं, हम दो हमारे दो नहीं, चार बच्चे आपके हैं। अब आपने क्या किया, आप घर पे गए, कोई बच्चा है उसने काम किया, बात माना, आप ट्राई करके देखो इसको, आपने एक बच्चे को जो वाकई आपकी फरमाबरदारी करता है, और दो बच्चे शरारती हैं आपके, सुनते ही नहीं, आप कितना भी बोलो सुनते नहीं, ठीक, आपने क्या किया, जो फरमाबरदार है उसका बेटा एक गिलास पानी लाओ, जाके वो पानी लेके आया, उसको आपने करीब किया, मेरा बच्चा कितना प्यारा है, बोलते ही काम करता है, वो दो देख रहे हैं आपको। अब आप ट्राई करो, बेटा वहां से वो फुला चीज लेकर, वो मेरी फाइल लेकर आओ, दौड़ेगा एकदम, आपने उसको भी करीब किया है, ये भी बच्चा अच्छा है। अब वो क्या करेगा, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ये तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, ये अच्छा है, ये एक नंबर का निकम्मा है, और मेहमान आए तो दो बुराई और करेंगे उसके सामने, आप क्या कर रहे हैं, उसको विलन बना रहे हैं आप। हाँ, बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का होता है, वो बनाने में बिगाड़ते हैं उनको। आप क्या करते हैं, आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा सुनता है, एक बच्चा नहीं सुनता। अरे भाई, हर एक का अपना एक मेथोडोलॉजी होता है जिंदगी गुजारने का। बच्चा है, अब वो आया, एक बच्चा, ये बच्चा मेरा बहुत प्यारा है, ये बुद्धू है, कुछ काम नहीं करता है, इसको एक बात बोले तो दूसरी करता। अब वो सुन रहा बैठ के, अच्छा न्यूज़पेपर पे मैं रेड कॉलम में हूं, उसके दिल में हेट्रेड पैदा होता है माँ बाप के लिए, कि ये मेरी क्या कर रहे हैं, एंटी मार्केटिंग कर रहे हैं, मुझको बदनाम कर रहे हैं कौम के अंदर। क्यों, बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, आपको क्या मालूम है, आप ये समझते हैं कि मतलब 18 साल का होगा उसके बाद ही उसको समझ में आएगा कि मेरी इज्जत भी इज्जत है। नहीं, छोटे बच्चों में भी इज्जत का सेंस होता है, आपको मालूम नहीं है, ये आपकी गलती है। क्यों, बचपन में आपके माँ बाप आपको कुछ भी बोल दी चाहे लोगों के बीच में, आपको अच्छा लगता था, कितनी अच्छी तारीफ हो रही है अपनी, अच्छा लगता था, नहीं बुरा लगता है। तो आपने क्या, आप हम खुद बिगाड़ते हैं बच्चों को। तो यहां पर बच्चे की तरबियत के लिए ये एक तरीका है कि किसी को बुरा नहीं, लेकिन इस बच्चे की तारीफ कर दी और दूसरे बच्चे को आपने इग्नोर किया, उसको बुरा नहीं बोला आपने, फिर उसको आपने कहा तो वो बच्चा उसे कम्पीट करने की कोशिश करता है, वो उसकी बराबरी करके सबक ले जाने की कोशिश करता है, बाद अवकात उससे ज्यादा करता है। अब मैं उसे जल्दी लाया ना, बोलता फाइल लाने वाला क्या होता है, अब मैं उसे जल्दी लाया ना, हाँ बेटा तो उससे जल्दी लाया, और हमेशा ऐसा करेगा तो बहुत तो आगे बढ़ेगा। अब आप उसने क्या सुना, यानी मेरी कुछ कदर है, मेरी क्या है, कदर है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं गॉन केस नहीं हूं। अब उसने लाया, हाँ एक बार ला के बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, गया दूध का उबाल आ रहा था, आपने चूल्हा बंद कर बन रहा था, आपने क्या कर दिया, वापस से उसको डीमोटिवेट आपने किया। एक बार ही करके उससे आगे बढ़ेगा, रोज करना पड़ेगा ऐसा, तब जाके बन सकता है। तू आया कहीं का, चल नहीं। तो ये जो मेंटालिटी है, ये तरीका इंसान के पास होना चाहिए, तरबियत का सही तरीका इंसान के पास होना चाहिए। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कई जगहों पर नेक लोगों की तारीफ की है। क्यों की है, बेवजह यूं ही ऐसा नहीं, वो तारीफ इसलिए की है कि जिन लोगों के अंदर ये मिजाज है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वैसे बने, उनको मालूम पड़े कि अल्लाह को कैसे लोग पसंद हैं, और फिर वो वैसा बनने की कोशिश करें। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह आल इमरान में कहा, मिन अहलिल किताब उम्मतुन क़ाइमतुन यतलून आयातिल्लाह आना अल-लैल वहुम यस्जुदून। अहल किताब में से बाज लोग ऐसे भी हैं जो हक पर कायम रहते हैं, अल्लाह की शरीयत पर कायम रहते हैं। अहल किताब में से वो लोग जो इस्लाम कबूल करके इस्लाम में आ चुके हैं, जो खैर पर, हक पर, सच्चाई पर कायम हैं, और अल्लाह की आयतें रात दिन पढ़ते हैं, और वहुम यस्जुदून और वो सजदा करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं, रातों में इबादत करते हैं, अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाते हैं। युक्मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वो आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। वयअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। वयुसारिऊना फिल खैरात, और नेकियों में दूसरों से आगे बढ़ते हैं, दूसरों पर सबकत ले जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करते हैं और दूसरों से आगे बढ़कर पहले करते हैं। वह ओला एक अमीन सालहीन, और यही लोग हैं जो वाकई नेक हैं, ये नेक लोगों में से। अब अल्लाह ने क्या किया, ये तारीफ की और क्वालिटीज बताई। अहले किताब में से कुछ लोग इस्लाम में ऐसे आए हैं, ये भी तो अहले किताब है, इसमें इशारा उन लोगों की तरफ है जो अहले किताब है। तुम क्यों ऐसे हो, तुम क्यों ऐसे हो कि देखो ये भी तो अहले किताब है, इनके पास भी तौरात था, इनके पास भी इंजील का इल्म था, इन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा, आखिरत पर ईमान रखा, और ये लोग हैं जो अल्लाह की आयात को रात दिन पढ़ते हैं और अपने आप को अल्लाह के आगे झुकाते हैं, घमंड नहीं करते हैं बल्कि अपने आप को अल्लाह के आगे सजदे में झुकाते हैं, वो नबी वाली नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान है वो अहले किताब से इस्लाम में आए, तुमको क्या रुकावट है। इनको अहले किताब के सामने बाद अहले किताब की तारीफ की जा रही जो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, कल वो अहले किताब थे, आज वो मुसलमान है। जैसे अल्लाह ने कहा वला तकुनु अव्वल काफिरिन बिही, तुम तो पहले इनकारी मत बनो, अहले किताब से कहा। तो उनमें से कुछ लोग इस्लाम में आए थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम या दूसरे सहाबा हैं, सलमान अल फारसी रजी अल्लाह तआला या और दूसरे सहाबा थे, तो कहा कि देखो अहले किताब में ऐसे लोग हैं जो हक पर कायम हैं और अल्लाह की किताब रात दिन पढ़ते हैं और सज्दे में अपने औकात गुजारते हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नेकियों में मुसारात करते हैं। मुसारात का मतलब होता है वक्त हो जाने पर जल्दी करना, देर न करना, जब मुनासिब वक्त हो उससे ताखीर न करना, इसको मुसारात कहते हैं। अजला कहते हैं वक्त से पहले जल्दी करना, फल पक जाए तो सड़ने से पहले तोड़ना, ये मुसारात है, और फल पकने से पहले तोड़ना ये अजला है। इसीलिए हदीस में क्या है, मुसारात की तरदीब कुरान और सुन्नत में है, वसारिउ इला मग़फिरतिन, लेकिन कहा वल अजलतु मिन शैतान, जल्दबाजी शैतान की तरफ से आती है, जल्दी करो भी अल्लाह बोलता है और जल्दी मत करो भी बता, दोनों में क्या फर्क है। जल्दी करना वो अच्छा है जो वक्त हो जाने पर जल्दी की जाए, वक्त चले जाने से पहले उसको कर लिया जाए, ये मुसारात है। और अजलह क्या है, वक्त होने से पहले ही जल्दी मचाई जाए, तो ये क्या है, नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। वक्त से पहले जल्दी करना, फसल पकने से पहले उसको काट देना, नुकसान पहुंचाएगा, या जला है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने अहले किताब में से बाज लोग जो मुसलमान हो चुके थे उनकी तारीफ की, ताकि वो दूसरे अहले किताब जो अभी ईमान में नहीं आए हैं इनके लिए तरगीब हो। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफ। ये मुशरिकीन के लिए तरगीब है और अहले किताब के लिए भी, क्या कहा, और उससे बेहतर दीन किसका हो सकता है, दीन में उससे बेहतर कौन हो सकता है जो अपने चेहरे को अल्लाह के लिए झुका दे, मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन, और अमली जिंदगी में भी वो भलाइयां करने वाला हो, वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और जो इब्राहिम जो कि हनीफ थे उनके दीन की पैरवी करता हो। इब्राहिम हनीफ जिन्होंने कुफ्र शिर्क से अपने आप अपने रुख को मोड़ के उन्होंने अपने आप को तौहीद और अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए आमादा किया और तैयार किया। तो उससे बेहतर दीन किसका होगा जो अपने चेहरे को अल्लाह के आगे झुका दे, यानी इखलास अपने अंदर पैदा करे, और वह हुआ मुहसिन, और वो भलाई करने वाला है, यानी उसका अमल अल्लाह की शरीयत के मुताबिक है। अल्लाह ने तारीफ की लोगों की। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कि वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इला अल्लाह व अमिला सालिहा व قال انني من المسلمين, और उससे अच्छा बात में और कौन हो सकता है, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं, कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं। अल्लाह ताला ने नेकी करने वालों की तारीफ की है कुरान करीम में। तो तरगीब का एक तरीका यह भी है कि आप नेक लोगों की तारीफ करें। نیک لوگوں کی آپ تعریف کریں. جیسے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعریف کرتے تھے لوگوں کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی, کہا کہ میں نے سب کا ابو بکر کے مال نے جو اس کو نفع پہنچایا وہ کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا. یا فلاں صحابی کے بارے میں کہا کہ فلاں کتنے اچھے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا عبداللہ کتنا ہی اچھا انسان ہے, کاش کے اورات میں تہجد کا اہتمام کرتا. آپ لوگوں کی تعریف کرتے تھے, یمن والے کتنے اچھے ہیں, فلاں کتنے اچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی تعریف کرتے تھے لوگوں کے درمیان میں, کبھی ان کی موجودگی میں کبھی غیر موجودگی میں. تو وہ جو تعریف تھی اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک خود ان کی حوصلہ افزائی کہ وہ اس پر باقی رہیں, اور دو جو لوگ اس پر نہیں ہیں ان کے دل میں بھی چاہت پیدا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ یہ کام کرتا ہے, اگر میں بھی کروں تو میرے لیے بھی وہی دعا دیں گے جو اس کے لیے دعا ہے. تو انسان کے اندر دوسرے جو آگے ہیں ان جیسا بننے کی چاہت ہوتی ہے, اور کسی کی نگاہ میں سراہے جانے کا احساس ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے. اسی لیے لوگ کلاسز میں پہلا نمبر دوسرا نمبر آنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو لوگوں کی نگاہ میں نمایاں ہونے کا شوق ہوتا ہے. بس تھوڑا سا فرق اس میں کر دیا جائے کہ انسان اللہ کے آگے اپنے کو نمایاں کرنے کی چاہت اپنے اندر رکھے, اور قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ سے انعام پانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. وہ انسان سے ہٹا نہیں سکتے آپ جذبہ کہ لوگوں کے بیچ میں. اس لیے قیامت کے دن کیا ہوگا, جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کیا کرے گا؟ وہ چھپائے گا
نہیں,
کیا کرے گا؟ فیقول ہا امقرؤ کتابی,
دیکھو میرا میرا رزلٹ کیسا ہے, زبردست ایک دم.
لوگوں کے بیچ میں بتائے گا, وہ بتائے گا لوگوں کو, دیکھو میرا نام اعمال کتنا اچھا ہے, یہ پاس ہو گیا میں. جو پاس ہو جاتا ہے وہ اپنا مارکس شیٹ کیا کرتا, نہیں رستے میں جو بھی ملتا تھا پاس ہو گیا, کتنے اچھے مارکس ملے, اس کو معلوم تھا میں پاس ہونے والا, میں نے بہت محنت کیا تھا. قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا. انسان کی فطرت میں ہے وہ کامیابی کو شیئر کرنا چاہتا ہے. شیئر بٹن ہے نا آپ کے پاس. انسان چاہتا ہے کہ وہ لوگ اس کی اکیلا آدمی کامیاب ہو گیا اور دنیا میں کوئی بھی اس کے آس پاس نہیں ہے, اس کو کسی جزیرے پہ چھوڑ دیے, کامیاب ہو گیا وہ اور اس کو آس پاس کوئی بھی نہیں, روم میں بند کر دیے, کیا ہوگا؟ اس کو خوشی ہو پائے گی؟ خوشی وہی ہے جو واقعی دوسروں کے سامنے بتائے. اکیلا آدمی خوش کیسے ہوگا بھائی؟ نہیں ہو پاتا ہے وہ, انسان کی فطرت میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی تعریف اس لیے کی تاکہ دوسرے لوگوں میں ویسا بننے کا جذبہ پیدا ہو. نمبر 7, انسان کے اندر بڑھانے کی چاہت ہے. الہاکم التکاثر, تمہیں اپنے مال کو بڑھانے کی چاہت غفلت میں ڈالے رکھتی ہے, دھوکے میں رکھتی ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو, دوسرے کے دفن کرنے کے لیے نہیں, خود دفن ہونے کے لیے. الہاکم التکاثر, تمہیں مال کی کثرت کی چاہت دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے, یہاں تک کہ تم کو اچانک موت آ جاتی ہے اور تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. انسان کو آپ دیکھیے, کوئی آدمی ہے بس ہو گیا, ابھی اب اس کے بعد ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی بتائیے پورے انڈیا میں اور دنیا میں, مجھ کو پیسہ نہیں چاہیے. دنیا کی جتنے بلینئر ملینئر ملٹی ملینئر ملٹی بلینئر جتنے بھی ہیں, اتنا پیسہ ہے کہ کئی نسلیں ان کی کھا سکتی ہیں, لیکن ان کو آپ دیکھیے صبح سے شام تک 5 منٹ یہاں 5 منٹ وہاں 20 منٹ وہاں 40 منٹ وہاں, ایک ایک منٹ کی قدر کرتے ہوئے پورا دن لگائے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو ساری کمپنیاں سنبھالنے میں ٹائم جا رہا ہے. تو کیوں کمایا اتنا پیسہ؟ سکون سے زندگی گزاروں. تو ابھی کیا کرنا؟ ابھی تیرا پورا ٹائم کمپنیوں میں جا رہا ہے, تو سکون کب کرے گا؟ مرنے کے بعد؟ انسان رک تھوڑی سکتے ہیں. آج میرے پاس 50 بلین ہے, مجھ کو 100 کرنے کا ٹارگیٹ میرا ہے, 100 کروں گا رک جاؤں گا, 100 ہو گیا, 150, 200, वो भी हो गया, नंबर वन मुझको बनना है, दुनिया में सबसे मालदार मुझको बनना है। इंसान की हिर्स कभी खत्म नहीं होती है। तो इंसान के अंदर उसकी एक कमजोरी ये भी है कि वो उसका बोलना क्या है, और कुछ हो सकता है, और ज्यादा हो सकता है। आप देखिए, कोई भी आदमी मान लीजिए जॉब कर रहा है, मालिक पूछता है कितनी तनख्वाह चाहिए, साहब 10,000, 20,000, 15,000, ठीक है 15,000, ठीक है 15 नहीं मैं 17 देता हूं, काम अच्छे से करना, ठीक करता 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 कुछ दिनों के बाद, एक दो साल के बाद क्या होता है, साहब कुछ तनख्वाह बढ़ सकती है, 17 का 20 कर सकते हैं। आदमी कभी रुकता नहीं है, उसकी चाहते, ये तो मामूली चीज हो गई, करोड़ों आदमी के पास हो तब भी रुकता नहीं आदमी, हालांकि उसके अंदर उसका गुजारा हो जाता है, लेकिन दिल आदमी का पेट भर जाता है, दिल भरता नहीं। बाद वक्त खाने में भी ऐसा होता है, अभी तो जगह नहीं लेकिन दिल नहीं भरा, खाना बहुत जबरदस्त है, आदमी का पेट भर जाता है उसका दिल नहीं भरता है, क्योंकि दिल की खाई ऐसी गहरी है कि उसका निचला कोई सिरा नहीं है, उसमें आदमी गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, ऐसी खाई हुआ। दिल का सुराख इतना बड़ा है, घड़ा इतना बड़ा है कि उसके अंदर आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कभी भरता नहीं है। जहन्नम की तरह हमेशा वो क्या कहता है, हल भी मजीद, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा, कुछ और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और इस और में वो दुनिया से भी निकल जाता है। तरगीब व तरहीब में इस नेगेटिव चीज को भी हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि माल के मुकाबले में आप नेकी की तरगीब उसको दिला दें। जाहिर बात है कि हमारे यहां पर नोट रुपए में चलते हैं, अमेरिका में डॉलर, और अफ्रीका का तो मालूम नहीं, लेकिन सऊदी में रियाल, जहां की जो करेंसी है उसके हिसाब से आदमी की मालदारी तय होती है। अब एक आदमी को दुनिया में माल काम आता है, क्योंकि यहां की ये करेंसी है, आखिरत की करेंसी क्या है, हाँ माल है नहीं है, नेकियां हैं। तो वहां जब जाने आदमी यहां से जाता है, जब मुल्क तब्दील करता है, यहां से सऊदी चला गया हज के लिए, उमरा के लिए, क्या करता हो, अपनी पूरी करेंसी वहां जाके 100 का नोट देगा तो आप सर से पांव तक देखेगा, बोले चाचा पहली बार आपको आए क्या, पहली बार सऊदी में आए, ये नहीं चलता यहां पे, यहां पे क्या चलता है, रियाल, मेरे पास बहुत है, आप तो ये नहीं चलेगा यहां पे, आपका सारा पैसा कुछ काम का नहीं, जब तक कि हमको रियाल नहीं दोगे हम आपको शॉल नहीं देंगे, हम आपको खाना नहीं दे सकते, इससे यहां कुछ नहीं मिलता है, आप जाओ कन्वर्ट करके लाओ, अपनी करेंसी एक्सचेंज करके लाओ, वहां रियाल चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वहां यूरो चलता है, आजकल बिटकॉइन भी चल रहा है, लेकिन बिटकॉइन का वेबसाइट हैक हुआ था मालूम है आपको, नहीं गड़बड़ है, उसने जाना नहीं, हमारे उलमा ने मना किया, उससे शेख सुलेमान अल-रहीली ने मना किया है, ये बिटकॉइन जो है ये अबिट डेंजरस है, क्रिप्टो करेंसी मालूम है आप लोगों को, नहीं नहीं मालूम तो अच्छा है, जो हमारे आईटी वाले हैं उसके से इंफैचुएटेड है जरा, ये करेंसी ऐसी है कि वेबसाइट डाउन हो गया तो आप भी डाउन हो गए, आपकी लाइफ डाउन, बीपी डाउन, सब डाउन, शट डाउन, ये मोतबर नहीं है, भले ही वो कितना ही ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो वो मोतबर नहीं, क्योंकि जिम्मेदार कौन है उसका, सारा मामला वेबसाइट पे है, और वेबसाइट हैक हो गया तो आपके पैसे कहां गए, हैक हो जाएंगे पूरे पैसे, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है नहीं, तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, पूरा आपका सारा मामला चौपट हो जाएगा, इस आप धोखे में न जाएं, जो आपके अच्छे मोटे मोटे नोट है आप उसको समझ, जैसे भी है नए आए तो रंग छोड़ रहे हो या जो भी हो, वो कुछ काम के हैं, वो तो कुछ भी काम का नहीं है। लिहाजा एक चीज समझ में आती है कि इंसान, उसको ये मालूम है कि यहां ये करेंसी चलती है, दूसरे मुल्क में जाएगा ये करेंसी चलेगी नहीं, तो उसके अंदर जज्बा बढ़ाने का भी, इसलिए क्या करता है, कितना चल रहा रियाल का अभी, 17 चल रहा, हाँ 18 चल रहा, तो जब ज्यादा चलेगा तब मैं क्या करूंगा, एक्सचेंज। उसके अंदर ज्यादा का जज्बा है, बढ़ाने का जज्बा है। वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जिसमें पैसा ज्यादा है। यहां मैं अगर 10 लाख डालता हूं, एक साल के अंदर 20 लाख होंगे। वहां डालता हूं, एक साल के अंदर 30 लाख होंगे। जाने दो 30, 10 ही बस है। करता है सर?
नहीं।
वो क्या चाहता है? अरे भाई, एक ही साल के अंदर यहां 10 मिल रहा है, वहां 20 मिल रहा है, तो क्यों ना वहां डालूं मैं। कोई भी पैदल भी अगर वो हो, उसको कम से कम भी अकल हो, तो इतना तो समझ में आता है 20 10 से बड़ा होता है। और एक ही टाइम पीरियड में अगर 20 मिल रहा है तो 10 क्यों? ज्यादा अच्छा है। कोई भी आदमी इसको अच्छे से जानता है, ज्यादा अच्छा होता है। लिहाजा ये भी एक तरगीब का तरीका, इंसान की कमजोरी है, उसको ज्यादा चाहिए, थोड़ा नहीं, ज्यादा चाहिए। बच्चों को आप देखिए, आप दो बच्चों को, बच्चे आपके लिए, बच्चे आप हैं, आप बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चा जो है उससे आप अपने आप को समझते, क्योंकि आप भी कभी बच्चे थे। आप चेंज हो गए, आपकी हाइट बढ़ गई, लेकिन जहन में बहुत सारी इंस्टिंक्ट जिसको आप कहते हैं, वो बच्चा खुल के सामने आता है, छुपाते, फर्क एक ही है। फर्क क्या है? बच्चा अपनी सारी चीजें खुल के सामने रखता है, क्योंकि उसको वो सेंस नहीं होता है कि मुझको देख के लोग पकड़ेंगे। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी बहुत सारी चीजों को हम छुपा लेते हैं, लेकिन चेंज नहीं होते हम लोग, अंदर वही रहता है, अंदर रहता है वो। तो आप देखिए, यानी बच्चों में अगर आप कुछ तकसीम कर दी है, एक को आपने चॉकलेट का बार दिया, एक दूसरे को भी दिया, तो लेने वाला क्या करता है? बाजू वाले का देखता है पहले, उसको क्या दिए। अगर आपने इसको छोटा दिया, उसको बड़ा दिया, तो उसके अंदर ये पैदा होता, उसको बड़ा क्यों? वो चाहता है कि ये, अब अगर कोई कहे वो चाहिए, हाँ ठीक वही चाहिए, तो उसे एक्सचेंज करके चाहिए, और ये नाराज होगा, वो खुश हो जाता है। इंसान पाने से ज्यादा ज्यादा पाने का शौकीन होता है, इसको याद रखिए। पाना उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा पाना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लिहाजा तरगीब का एक तरीका ये भी है कि आप ये बताएं कि तुम अगर ये करोगे तुम्हारी करेंसी बढ़ेगी, तुम अगर ये काम करोगे तुम्हारा, तुम्हारी नेकियां बढ़ेंगी। तो नेकियों का बढ़ना, नेकियों का कई गुना होना, देखिए बैंक में लोग पैसा क्यों रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट क्यों करते हैं? गुड़िया बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? आज मैं 10 लाख रख रहा हूं, 10 साल के अंदर 10 के कितने होंगे? 20। तो बैठे बैठे पैसा बढ़ रहा है भाई, तो 10 का 20 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अच्छा है ना। इंसान की फितरत में मल्टीप्लाई होना है। मैं पुराने बिजनेस में पैसा डाल रहा हूं, 5 साल तक पैसा लगा रहेगा, मैं बस पार्टनर बना रहूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी बैंक में पैसा पड़ा रहेगा या तिजोरी में पड़ा रहेगा, उससे अच्छा बिजनेस पे चला जाए। जमीन खरीद के ले लिया, जमीन पड़ी हुई उधर ही है, जमीन की कीमत बढ़ती चली जाएगी, मेरा रेट जमीन का बढ़ेगा, पैसा कल को ज्यादा आएगा। इंसान चाहता है कि कम ज्यादा हो जाए, मैं कम करूं और आउटपुट उसका क्या है? ज्यादा है। ये दुनिया के बारे में अगर है तो आखिरत के बारे में भी है। इंसान की नेकियां, उन नेकियों की क्वालिटी की बुनियाद पर अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा देता है। मसलन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन अल्लाह ला यज़लिमु मिसकाल ज़र्रा, अल्लाह ताला जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है। अल्लाह ताला जर्रा बराबर, वाकई जर्रा को भी जर्रा कहते हैं, और इसी तरह से चूंटी को भी अरबी में जर्रा कहा जाता है। चूंटी के इतना भी अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता है कि अल्लाह ताला जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है। وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई एक नेकी है जो इंसान करता है, وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, अल्लाह ताला उस नेकी को कई गुना बढ़ा के अता करता है। وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, बल्कि अपनी तरफ से एक अजीम शान अजर अता फरमाता है। यहां पर अल्लाह ताला ने बतलाया कि अल्लाह ताला इंसान की नेकियों को बढ़ाता है। एक नेकी अल्लाह के पास भेज दो, अल्लाह ताला उसको मल्टीप्लाई करता है। कयामत का दिन जब आएगा तेरी नीकी अगर 100 थी तो कई गुना बढ़ के मिलेंगी, आज कर ले कल काम आएगा। वहां जब जाएगा आखिरत में, आखिरत की नेमतों को पाने के लिए पैसा नहीं है, वहां की नेमतों को पाने के लिए नेकियां हैं। तो तेरी जन्नत का जो लेवल तेरा होगा वो तेरी नेकियों की बदौलत और उसकी बुनियाद पर तुझको मिलेगा। आज तेरे पास नेकियां होनी चाहिए, थोड़ी नेकियां छोटी जन्नत, उससे ज्यादा नेकियां ठीक है वो भी जन्नत, आला नेकियां बहुत ज्यादा नेकियां ऊंची जन्नत। तो जिस लेवल की तेरी नेकियां होंगी, जितना तू खर्च करने के लिए तैयार है, उस लेवल की सोसाइटी में तुझको फ्लैट मिलेगा जन्नत में। उस दर्जे का महल तेरा होगा जिस दर्जे की नेकियां तेरे पास है। तो ये तेरी करंसी है जन्नत पाने के लिए, हालांकि वो उसका बदला इक्वल नहीं है, अल्लाह अपनी तरफ से देगा। इतना जमा के आज उसको देता हूं, जितना लाएगा उतनी जन्नत मिलेगी। आप सोचिए ये अगर जहन में बैठ जाए, मान लीजिए आज 100 नेकियों पर जन्नतुल फिरदौस मिल सकती है, इसके पास 99 है, अगर फरिश्ता आके बता दे कि तेरी नेकियां इतनी हैं कि अगर एक नेकी अगर हो जाए तो तू जन्नतुल फिरदौस पा लेगा, और वो एक नेकी नहीं रही जन्नतुल फिरदौस नहीं, उससे नीचे की जन्नत मिलेगी। और तेरे पास अभी एक मिनट है, क्या करना चाहता है? तेरे पास एक मिनट है, वो क्या करेगा आदमी उसको अगर मालूम हो जाए? एक नेकी से जन्नतुल फिरदौस मिल सकती है और मेरे पास कम है, इसी हाल में मर गया तो मुझको जन्नतुल फिरदौस नहीं मिलेगी, और मौका मेरे पास है, क्यों ना मैं नेकी करूं। तो इंसान के वैसे फरिश्ते ने बता दिया जन्नत तो कंफर्म है, लेकिन तो उसको क्या है? फिरदौस मिल सकती। फिरदौस क्या है? जन्नत का वो सबसे ऊंचा दर्जा जिसकी छत अल्लाह ताला का अर्श है, और वो सबसे आला दर्जा है जन्नत का। जन्नत के 100 दर्जात हैं, कितने? 100। 100 लेवल की जन्नत है। दर्जे का मतलब फ्लोर नहीं, पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर नीचे से ऊपर जाके देखूंगा, ऐसा नहीं। जन्नत के मर्तबों का फर्क कैसा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के मर्तबों का फर्क ऐसा है जैसे आदमी जमीन पे खड़े होकर ऊपर एकदम रोशन सितारे को देखता है, कितना डिस्टेंस है, कितना फर्क है, ऐसा जन्नत के दर्जात का फर्क है। यहां एक दर्जा और ऊपर एक दर्जा, उससे ऊपर एक दर्जा, उससे ऊपर एक दर्जा, ऐसे कितने दर्जे हैं? 100। और वो सिर्फ ऊपर का फर्क नहीं है, वहां की नेमतें अलग, वहां की नेमतें अलग। मामूली होटल में आदमी रुकता है, उसके अलग अलग लेवल होते हैं, 5-स्टार होटल, 3-स्टार होटल, 1-स्टार, टूटा हुआ स्टार, टूटे हुए स्टार, कटमल काट रहे रात भर, ये टूटा हुआ स्टार है, करवट ले रहा तकिया पत्थर की तरह एकदम, और कूलर जो है ठंडक कम आवाज ज्यादा, पंखा नींद लाने की बजाय नींद भगा रहा है, ये हाल है वहां का। मच्छर भगाने के लिए जो रखा हुआ है वो मच्छर को तो नहीं भगा रहा है, मच्छर उस पर बैठे हुए हैं और मैं भाग जाऊं ऐसा हो रहा है उसको कमरे से, इतना धुआं कमरे में हो गया है। लेवल्स, वहां की नेमतें आला, अगले मर्तबे में अगले दर्जे में जो नेमतें होंगी वो इनको नसीब नहीं होंगी। क्या होगा वो उन्हीं को मालूम होगा, उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर 100 दर्जे, सोचिए। तो मेरे पास ज्यादा नेकियां होंगी, ऊपर की जन्नत मिलेगी, उससे ज्यादा होंगी उससे ऊपर की मिलेंगी, कहां तक? जन्नतुल फिरदौस। अब कैसे नेकियां करूं इतनी छोटी जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं? अल्लाह ताला ने बतला ये नेकी करेगा इतनी बढ़ा देंगे, ये नेकी करेगा इतना गुना मिलेगा, ये नेकी करेगा इतना गुना मिलेगा। अब एक आदमी की मेंटालिटी ऐसी होना चाहिए कि कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा नेकियां सारी जिंदगी भर करता रहूं, ताकि खूब नेकियां जमा हो जाएं और जन्नत में एकदम टॉप लेवल तक मैं पहुंच जाऊं, जहां तक पहुंच सकता। अगर ये जहन आदमी का बने, ये तरकीब है उसके लिए कि मेरी नेकियां ज्यादा से ज्यादा, हर मिनट मेरा नेकी वाला कैसे बने, हर दिन मेरा नेकियों वाला कैसे बने, اور سارے گناہ ڈیلیٹ کیسے ہوں؟ توبہ استغفار کے ذریعے سے. تو کیسے میں اپنے آپ کو بناؤں؟ یہ ذہنیت انسان کی اگر بن جائے آدمی واقعی آگے بڑھ سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, ان تک حسنتن یضاعفھا, تم ایک بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا, اس کو کئی گنا کرے گا, ملٹی پلائی کرے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان اجر تم کو عطا کرے گا. تم نیکی تو کرو, ایک ہی صحیح کرو تو صحیح, تمہاری ایک نیکی بھی اللہ کئی گنا بڑھائے گا. اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ کمپنی کا باس بولتا ہے اگر تم ایک روپے کا کام کرو گے ہم تم کو 10 روپے دیں گے, اور اگر کام کا کوالٹی اچھا رہے گا 700 روپے دیں گے. تمہاری تنخواہ اگر 1 لاکھ ہے, 50,000 ہے, اب پکڑو 700 کے حساب سے. آدمی کام چھوڑ کے سوچتے بیٹھے گا کیا ہوگا نا. واقعی اگر کمپنی کا باس بول دے کہ تم ایک روپے کا کام کرو گے نا ہم تم کو 700 روپے دیں گے, اور واقعی سچا ہے, آدمی کتنا کام کرے گا؟ دن بھر کام کرے گا آدمی. کیوں؟ پاور کیا ہے؟ ملٹیپلیکیشن کا پاور ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ترغیب دینے کا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے, آپ کیسے ترغیب دے رہے لوگوں کو نیکی کرنے کی. آپ کہتے ہیں, ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك, اللہ تعالی نے نیکیوں کو لکھ دیا اور برائیوں کو لکھ دیا. ثم بین ذلك, اللہ نے خود لکھ دیا یہ اچھا یہ برا. اچھے اور برے کی تمیز کس نے رکھی؟ اچھا کیا اور برا کیا ہے؟ جس کو اللہ اچھا کہے وہ اچھا, جس کو اللہ برا کہے وہ برا. مالک کون ہے؟ اللہ. بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں, بعض اوقات سوچتے ہیں سود میں برا کیا ہے, سود بھی تو پیسہ ہے, اور تجارت میں جو پروفٹ ہے وہ بھی تو پیسہ ہے, تو اگر یہ بڑھ کے آتا ہے تو اچھا اور وہ بڑھ کے آتا ہے تو برا. اگر انسان کو تجارت میں نفع ہوتا ہے, کئی بڑھ کے آتا ہے, تجارت میں آپ نے ڈالا پیسہ اور بڑھ کے آیا وہ اچھا. سود آپ نے کسی کو قرض دیا اور آپ اس سے سود لے رہے ہیں, بڑھ کے آ رہا وہ برا. کیسے؟ یہ بھی پیسہ وہ بھی پیسہ, یہ بھی بڑا وہ بھی بڑا. تو یاد رکھیں کہ آخری بات یہ ہے کہ اللہ جس کو اچھا کہے وہ اچھا, اللہ جس کو برا کہے وہ برا. کیوں ایسا؟ ایسا کیوں؟ اللہ مالک ہے, اللہ تعالی مالک ہے. کس کا؟ ہمارا, ساری دنیا کا. یہ پوری دنیا اللہ کی, آسمان و زمین اللہ کے, یہاں جو بھی چاہے قانون اللہ بنائے, جو بھی چاہے قانون اللہ بنائے. آپ دیکھیے کمپنیوں کے اندر یہ کپڑے پہن کے آنے پڑیں گے, اسکول کے اندر, کمپنیوں کے اندر اتنے بجے آنا پڑے گا, موبائل باہر رکھنے کا ہے نا. میرا موبائل ہے, آزاد ملک ہے, میں میرے پاس رکھوں گا, میری مرضی, باہر جاؤ, تم بھی جاؤ, موبائل دو تم بھی. ایسا کیوں قانون؟ کمپنی کی پالیسی ہے. لوگ دین کے معاملے میں جو نہیں سمجھ پاتے ہیں, انگلش کے حساب سے سمجھ میں آ جاتا ہے, ذرا سی انگلش بول دو سب سمجھ میں آتا ہے. کیوں ایسا بھائی؟ موبائل باہر رکھ کے آنا, موبائل اندر نہیں لا سکتے, انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتے, ڈاؤن لوڈ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں بھائی ایسا؟ کمپنی کی پالیسی ہے. تو انگلش میں بولنے سے صحیح ہو جاتا کچھ بھی؟ تو آدمی بہت ایزیلی مانگ لیتا اس کو, بھائی کمپنی کی پالیسی ایسا نہیں کر سکتے, وہاں پہ کمپنی کے اندر قاعدہ ہے, کمپنی کا قانون ہے ہمارے, ایسا ہم نہیں کر سکتے. ایسا آپ سوچیے, لوگ کمپنی کا قانون ہے بول کے کئی چیزوں کو مان لیتے ہیں. اب نہیں بولتے ہیں آزادی کا کیا, ہماری چاہت کا کیا, ہماری مرضی, ایسا ظلم ہے یہ. تو فون آیا تو کبھی کچھ بھی نہیں, کام کرنا ہے بیٹا, باہر موبائل چھوڑ کے آتا. کمپنی کا قانون ہے, کتنی کمپنی میں کتنے قانون بنے رہتے ہیں, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے, لباس کے اعتبار سے, ہاں موبائل کے اعتبار سے, کسی اور اعتبار سے, آدمی کو کرنا پڑتا ہے. اسکولوں میں آپ دیکھیے کرنا پڑتا ہے. دین میں یاد رکھیں, اچھا وہ جو اللہ نے بتایا, اچھا برا وہ جو اللہ تعالی نے بتایا. کیا یہ آسمانی پالیسی ہے, اللہ کی طرف سے بتایا گیا, خلاص اللہ نے حکم دے دیا, اچھا ہی برا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس میں حکمت ہوتی ہے, انسان کا اپنا بھلا ہوتا ہے, लेकिन फाइनल बात क्या है, अगर तेरी समझ में ना आए भला है कि बुरा है, अल्लाह ने मना कर दिया तो बुरा है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो अच्छा है। इसीलिए कहा अल्लाह ने नेकियां और बुराइयां लिखी, वो नेकी क्यों हुई, अल्लाह ने उसको नेकी करार दिया है, वो बुराई क्यों हुई, अल्लाह ने उसको बुरा बताया। और तुम बयान डाले, फिर अल्लाह ताला ने बंदों को बयान कर दिया, बंदों के सामने नबियों के जरिए से, किताबों के जरिए से बंदों को बतला दिया ये अच्छा ये बुरा, ये नहीं कि अल्लाह ने तय कर दिया और छुपा के रखा, नहीं, अल्लाह ने बंदों को बताया देखो ये करो ये अच्छा है ये बुरा है ये मत करो। फमन हम अभी हसनतिन, अब सुनिए, फमन हम अभी हसनतिन फलम या अमल है, लिहाजा कोई आदमी किसी नेकी का इरादा करे, जैसे कोई आदमी सोचे कि इस साल मैं हज को जाऊंगा, इस साल मैं उमरा करूंगा, आज रात मैं उठ के तहज्जुद पढ़ूंगा, बहुत दिनवा नहीं पढ़ा आज पढ़ूंगा मैं, फमन हम अभी हसनती फलम या अमल है, लेकिन वो कर नहीं पाया, उसको नेकी का इरादा किया लेकिन नेकी कर पाया नहीं, كتب الله له عنده حسنة كاملة, अल्लाह ताला अपने पास उस इरादे की वजह से एक कामिल नेकी लिख देता है। एक आदमी ने नियत की हज को जाऊंगा, मर गया नहीं कर पाया, तो सवाब मिलेगा हज का कि नहीं मिलेगा, कायदे से कैसा लगता है मिलना चाहिए, किया नहीं तो मिलना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका इरादा था, अल्लाह ताला उसके इरादे पर उसको एक सवाब दे देता है। आदमी का सवाब उसकी नीयत से शुरू होता है, अमल से नहीं। सोचिए अल्लाह की रहमत देखिए, आदमी का सवाब कहां से शुरू होता है, यानी आप उसकी नीयत से, अभी ये जवान है नीयत कर रहा है जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं फुला फुला काम करूंगा, जब फ्री हो जाऊंगा, ये नहीं कि बूढ़ा होगा तो पांच टाइम की नमाज पढ़ूंगा, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, तो आज भी है, आप सोचेंगे चलो एक बात मालूम पड़ी, नीयत करने से सवाब मिलता है, इंशाअल्लाह पांच टाइम की नमाज पढ़ेंगे कब, रिटायर होने के बाद, वो आज फर्ज है, ये ऐसी नहीं किया है जो फर्ज नहीं उसके ऊपर, या फर्ज है तो इरादा किया लेकिन कर नहीं पाया, बीमार हो गया मसलन, हज का इरादा किया बिस्तर पे पड़ गया नहीं कर पाया, तो एक आदमी नियत करता है और कर नहीं पाता है, या नफल नहीं की है और उन किसी वजह से नहीं करता है, इरादा छोड़ देता है, तो क्या है, एक नेकी उसको जरूर मिलेगी। फिर कहा फइन हुआ हम मबिहा फामिलाहा, अगर वो इरादा करे नेकी का और नेकी कर गुजरे, वो नेकी कर ले, कतबहल्लाहु लहु इंदहु अशर हसनात, अल्लाह ताला उस एक नेकी पर अपने यहां उसके लिए दस नेकियों का सवाब लिखता है। पढ़ा एक नमाज लेकिन सवाब कितना मिल रहा है उसको, दस, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा, सवाब करेंसी कितनी बन रही है, हाँ कमाए एक रुपया लेकिन लिखे कितने जा रहे हैं, दस, दस बस नहीं, दस तो बिगिनिंग है। كتب الله له عنده عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره, ये बहुत अहम हदीस है कि अल्लाह ताला उस एक नेकी पर अपने यहां कम से कम 10 नेकी से लेकर 700 नेकियों तक सवाब लिख देता है, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा। मालूम ही हुआ कि नेकियों के लिखने की कोई हद नहीं है, एक नेकी अगर करता है मिनिमम कितना मिलेगा, 10, और एवरेज के हिसाब से जनरल कानून कितना है, मैक्सिमम कितना होगा, 700। जैसे एक आदमी ने मसलन एक अच्छी सी नमाज पढ़ी, प्यारी एकदम सुकून के साथ खुशो के साथ अल्लाह के लिए पढ़ लिया, फिनिश, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, एक नमाज पढ़ा उसने, पांच मिनट लगे उसको दो रकअत पढ़ने के लिए, उस एक नमाज का सवाब अगर अच्छे से पढ़ लिया, अगर अल्लाह के यहां एकदम पास हो गई हो, तो अल्लाह ताला कम से कम 10 से लेके 700 सवाब उसका लिख देते कि 700 नमाजें पढ़ ली है इसने। 700 नमाज पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए सोचिए, 5 मिनट अगर एक नमाज के लिए, तो 700 के लिए कितने मिनट लगेंगे, 3500 उसके कितने घंटे होंगे आप सोचिए, 24 घंटे का एक दिन, 2400 का कितने दिन, 100 दिन, तो मालूम है कि तकरीबन एक साल भर के करीब वक्त लगता है उसको, कितने कितने सारे दिन लगेंगे उसको मालूम नहीं, तो इतना वक्त उसका जाएगा, लेकिन एक नमाज अच्छे से पढ़ लिया अल्लाह 700 गुना तक उसको सवाब दे सकता है। जिंदगी आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप अकलमंदी से अच्छे से नेकियां करके ज्यादा लंबी जिंदगी के हिसाब से नेकियां कर सकते हैं, इतनी नेकियां कि गोया 1000 साल मिले थे इसको, इतनी नेकी करके आया। कैसा किया इसने, बहुत अकलमंदी से किया, इखलास के साथ सुन्नत के ताबे होकर और अपने औकात को सही तौर से इस्तेमाल करके। लेकिन यहां पे बात रुकती नहीं है, बल्कि कहा इला अदाफिन कतीरा, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा दे सकता है। 700 तो बताने के हिसाब से मैक्सिमम है, लेकिन जैसे अल्लाह ने कहा इन्नमा युवफ़्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को उनका अजर देगा बेहिसाब। अस्सौम ली व अन अजजी बिही, रोजा मेरे लिए है मैं उसका सवाब दूंगा। 700 गुना तक तो बताया है, उसका मैं दूंगा अपनी तरफ से कितना देना मैं दूंगा, अब नहीं बताऊंगा। तो मालूम हुआ कि एक नेकी का सवाब कई गुना अल्लाह दे सकता है। अगर एक नेकी कम पड़ गई आदमी को, जन्नत में जाने के लिए क्या करेगा कयामत के दिन। आज मौका है एक आदमी एक 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 जोड़ते जोड़ते नेकियां करे, अपने औकात को गलत इस्तेमाल न करे। आपके पास नेकी करने के लिए क्या है, टाइम, और कल आपके पास नेकी के लिए क्या नहीं होगा, टाइम कीमती है। इसीलिए हदीस में क्या है, निअमतान मकबून फीहिमा कसीरुन मिनन्नास अस्सिहत वलफराग, दो नेमतें हैं जिनके बारे में लोगों की अक्सरियत, लोगों की एक बड़ी तादाद, कसीर तादाद धोखे में है, अक्सरियत कसीर तादाद धोखे में है। क्या है वो, सेहत और फ्री टाइम, सेहत और फरागत, फारिग वक्त उसके पास है, जाय कर रहा है, बैठे बैठे बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। टाइम पास, जिंदगी इतनी कीमती है भाई, टाइम पास के लिए जिंदगी है। कितने लोग जो है वक्त यूं ही बर्बाद कर देते हैं, एक एक दिन बर्बाद करते हैं। मान लीजिए एक आदमी जहन्नम में चला गया, उसके बाद उसको कहा जाए कुछ नहीं देंगे, एक दिन देंगे, एक दिन, एक दिन में मैं क्या नहीं कर सकता, एक दिन में मैं क्या नहीं कर सकता। वो एक दिन आज हमारे पास है, हम क्या कर रहे हैं। वही दिन अगर एक जहन्नमी को मिल जाए तो, जो हमारे पास आज एक दिन है, वही एक जहन्नमी को मिल जाए तो क्या करेगा, कितना कुछ नहीं करेगा, तौबा करेगा, नमाज पढ़ेगा, जिक्र करेगा, सारी नीकियां कर लेगा, सबसे माफी शाफी कर लेगा, सबसे अपने गलतियों की माफी मांग लेगा। तो एक दिन बहुत कीमती है, वक्त जाया ना हो, ये जिंदगी बहुत कीमती है, अपने एक एक मिनट को सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहां पर हदीस में, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अगर आदमी एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उस एक नेकी के बदले में उसको कई गुना सवाब अदा करता है। तो ये जो ज्यादती का शौक इंसान को है, जो रुपए के बारे में है, वो नेकियों के बारे में उसको, उसी को डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो आदमी अमल पर आएगा और उसको हर दिन में लगेगा आज मैं कितनी नेकियां कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा आज कमा लूं तो मेरा दिन जो है कामयाब हो जाएगा, मैं इतनी नेकियां करूं कि मेरा आज का दिन का कोटा पूरा हो जाए। ऐसा ना हो कि मेरी नेकियां आज कम हो। हर आदमी ताजिर आप देखिए शाम को पूरा हिसाब करता है, कितना पैसा आया, कितना गया, अगर ज्यादा आया तो खुश होता है, कम आया तो नुकसान में आदमी, यानी उसको बुरा लगता है, गमगीन होता है। लिहाजा हर दिन को आप अपना तिजारत का दिन माने नेकियों के एतबार से, और उस दिन में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए और दीन का इल्म हासिल करने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद कुछ और चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम अगले दर्स में देखेंगे। अकुल हादा, अस्तगफिरुल्लाह।